أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ہم نے ابھی تک ریویو کیا تھا حدیث نمبر 1208 تک، الحمدللہ. آگے ہم انشاءاللہ تعالی آج کریں گے، اور یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلا ہے کتاب الامارہ میں کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر مسلمان پہلے بیعت کر لیں اسی پر پھر قائم رہیں. یہ نہیں ہے کہ آج وفاداریاں ایک کے ساتھ، کل دوسرے کے ساتھ، پرسوں تیسرے کے ساتھ، جس نے اپنے ساتھ لگا لیا بس اس کے ساتھ چل پڑے، اور یا آج مجھے یہ پسند ہے کل کو کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ لگ جائیں. یہ نہیں ہوگا. آج کے دور کے اندر آپ جمہوریتوں وغیرہ میں تو ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس میں آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک کو اگر کسی نے خود ووٹ دے کے الیکٹ کیا بھی ہے تو کل کو اس سے ناراض ہو کے اور یا پیسے لے کے دوسری طرف اپنی وفاداری بدل لیتے ہیں. خلافت میں ایسا نہیں ہوتا. جس کے ساتھ ایک دفعہ بیعت کر لی جس کے ہاتھ پہ، اسی کے ساتھ وفادار رہنا ضروری ہوتا ہے. اور اس چیز کا قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا لوگوں سے. اچھا، اب یہ اس کے اندر تھوڑا سا یہ بھی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم میرے خیال اس کو کر بھی لیا تھا، میرے خیال میں یہ پوری ہو گئی تھی بات، کہ خلافت کے جو یہاں پہ ہمیں اصول اور ضابطے بتائے جا رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خود کے لیے بھلائی ہے. اس لیے کہ جب خلیفہ کے ساتھ اس طرح سے لوگ بیعت کریں گے کہ اس کے وفادار رہیں تو سب کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق رہے گا، انارکی نہیں ہوگی اس ملک کے اندر. چاہے وہ جیسا بھی حکمران ہے، کوئی بھی حکمران پرفیکٹ تو نہیں ہوتا 100%، لیکن وہ جیسا بھی ہوگا پھر وہ اپنے کاموں کے اوپر توجہ دے سکتا ہے، نہ کہ وہ اب ایزی اسی میں لگا رہے کہ دشمنوں کو ختم کر رہا ہے اور اس کو چپ کرا رہا ہے اور اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہوگا. پھر وہ ایک ڈائریکشن میں کام کر سکتا ہے، دوسرے لوگ بھی چین اور آرام سے بیٹھ جائیں کہ بس اب یہی ہے. یہ چیز آپ چاہے دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں، جمہوریت تو ہے لیکن آپ دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ ایک الیکٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے پاس اس کے نیچے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تک کہ بہت ہی اندھیر نگری نہ ہو جائے. مگر ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ آئے دن کوئی جلوس نکال رہے ہیں، آئے دن کوئی خرابی ہو رہی ہے، آئے دن لوگ ایک ہی کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جتنی ان کی مدت ہوتی ہے 4 یا 5 سال جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اس کو پورا کر کے اور پھر وہ فارغ ہوتا ہے، اور لوگ پھر اپنے ووٹ سے نئے کو لے کر آتے ہیں اگر اس کو پچھلے والے سے شکایت تھی. تو یعنی ان لوگوں نے جمہوریت میں بھی ایک سے ایک سٹینڈرڈ یا ایک یہ ڈسپلن رکھا ہے کہ اب اس کو تسلیم، جب آ گیا تو اس کو تسلیم کر لیا. اسی طرح خلافت کے اندر جب کوئی خلیفہ بن گیا اور اس کی بیعت لے لی تو اب آئے دن کوئی یعنی اتنے فساد کھڑے کر کے اس کے لیے پریشانی نہیں کرنی، بلکہ اس کو کام کرنے دینا، اس کے بعد اس سے جو وفاداری کا عہد لے لیا اس کو نبھانا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ نیا خلیفہ کوئی آئے گا تو تب کی اس وقت دیکھی جائے گی، لیکن ادروائز ایسا نہیں ہے کہ روز روز کوئی گڑبڑ ملک میں کی جائے. تو اس سے بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے. اچھا، آگے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جی نفیسہ، آپ بتائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی تھی انصار کو خاص طور پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خلافت کے معاملے میں کیا نصیحت فرمائی تھی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی انصار کو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تم، میرا خیال یہی ہے کہ جس امیر سے آپ نے، جس خلیفہ سے بیعت کی ہے اس کی اطاعت کرنا.
ٹھیک ہے. اور
کیونکہ اس کی وفاداری پہ قائم رہنا اور ان کو جو حق ہے اس کا اس میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس دن ان کی رعایا کے متعلق پوچھ ہوگی خلیفہ سے نا کہ تمہاری رعایا نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے.
اور کیا نصیحت؟
تمہارے حق ادا نہ کیے جائے تو صبر سے کام لینا،
جی
یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ آ کے
सही सही, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को खास तौर पे ये ताकीद की थी कि ये ना हो कि मेरे बाद आपस में झगड़ने शुरू हो जाओगे भाई, क्योंकि उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये जो कबाइली तासुब था ना, बहुत ज्यादा था कि वो मेरे कबीले को या ये हमें मिलनी चाहिए ये खैर। और आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से बचाने के लिए कि बाद में ये लड़ाई झगड़े ना हो, अंसार को खास तौर पे ये बात फरमाई थी कि तुम मेरे बाद तुम देखोगे कि कुछ लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है तुम पे। मसलन है, आप देखें जितने भी खलीफा बने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सब तमाम मुहाजरीन थे, अंसार में से तो ये कोई भी नहीं था चारों में से, खुलफाए राशिदीन में से। तो एक उनको लगेगा कि हम में से भी तो कोई खलीफा होना चाहिए, तो इसलिए सिकार जस्ट 1210, नहीं 1209 जो है ना, वो अंसार से ही तो है कि तुम्हारे बाद, तुम मेरे बाद एक जमाना ऐसा देखोगे कि तुम पर दूसरों को मुकद्दम किया जाएगा, ये अंसार से ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था कि यानी ऐसे ही ऐसा एक वक्त आएगा कि हो सकता है किसी और को तुम पे ऊपर कर दिया जाए, तो उस वक्त उनको फील होगा कि हमने तो इतनी कुर्बानियां दी, ये तो बाद में आए, हम कई कई लोग तो बहुत बाद में भी आए, बाद में मुसलमान हुए, कोई बाद में मदीना पहुंचे हिजरत करके, तो इन लोगों को कोई ओहदे दिए जा रहे हैं, ये हमसे ज्यादा किया जा रहा है, तो ये तो फेयर नहीं है, हमने भी तो बहुत कुर्बानी दी है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद के लोग ये ना हो कि लड़ने खड़े हो जाएं, एक दूसरे की गर्दनें मारें, तो उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमा दी थी कि आपके ऊपर जो हक किसी का है वो देते रहना, और जो अपना हक है वो अल्लाह से मांगना। ये कितनी प्यारी एक बात है जो अगर हम सब लोग अपने पल्ले बांध दें तो हमारी जिंदगी में से कितनी सारे मसले खत्म हो जाए। हम क्या करते हैं, अपना हक दूसरे से मांगते हैं और दूसरे का हक देने में कोताही करते हैं, कहते हैं उसने तो दिया नहीं है मैं क्यों दूं, पहले वो तो मेरा हक देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत फरमाई, जो हकूक तुम पर दूसरों के वाजिब हो उनको तुम अदा करते रहना, यानी उसमें ये नहीं देखना इसने किया है कि नहीं किया, इसने मेरा हक दिया या नहीं दिया, और अपने हकूक किससे मांगना। आज कितनी राइट्स की फाइट है ना, कहीं विमेन राइट्स हैं, कहीं एनिमल राइट हैं, कहीं ह्यूमन राइट हैं, कहीं पता नहीं किस किस तरह के राइट हैं, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट। फरमाया अपना हक अल्लाह से मांगना, आपका राइट जो है दूसरा नहीं दे रहा तो उसकी गर्दनें ना पकड़ के उसके साथ लड़ने मरने खड़े हो जाना, अल्लाह से मांगो। अब क्या ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी वाजे नसीहत नहीं है हम सबके लिए भी, हम अपनी जिंदगी में क्या करें, सिर्फ ये हुकूमत के मामलात में नहीं है, ये एक अमूमी बात है, ये जब भी हकूक का मामला है तो फिर हमने क्या करना। और ये याद रखिएगा, ये लूलू वल मरजान यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में जो अहादीस हैं वो हैं, यानी इसमें कोई भी शक नहीं है इन अहादीस में। और अंसार को तो खास तौर पे ही भी कि आप में से जो हो सकता है, बाज दफा ऐसे कोई जॉब होती है, कोई ओहदा होता है, कोई चीज होती है जिसमें, या कोई तकसीम हो रही हो कोई चीजें, उसमें बाज को बाज के ऊपर प्रायोरिटी दे दी जाती है और दूसरा समझता नहीं कि मेरा हक था, ये मेरा हक था, इसको क्यों दिया गया, मैं इससे कम हूँ। आम मामलात में भी आप देखें, हम आज के वक्त के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है, सिर्फ इस चीज को ये सोच के ये अंसार के लिए था तो हम इसको पीछे नहीं कर सकते, हमारे लिए आई ओपनिंग है, क्योंकि यहीं से झगड़े शुरू होते हैं, ये मेरा हक था जी, ये उसको दे दिया, ये उसमें ये मेरी चीज थी, या ये मुझे मिलना चाहिए था ओहदा, या ये काम मुझे मिलना चाहिए था, या ये माल मुझे मिलना चाहिए था। और वाकई बाज दफा लोगों के हक होते हैं, वो डिजर्व करते हैं, मगर देखें सुभानअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकि लोग आपस में कटे फटे नहीं, आपस में झगड़े नहीं खड़े हो, ये नसीहत फरमाई थी। जब भी आपके ऊपर किसी और को तरजीह दे दी जाए, आप एक घर में ही रहते हैं, आपके ऊपर आपकी देवरानी को, आपकी जेठानी को, आपकी नंद को तरजीह दे दी गई है, तो उस बात आपने क्या करना है। या आप एक ही माँ बाप की औलाद है, माँ बाप एक बच्चे को आपके ऊपर तरजीह दे देते हैं, दूसरे आपके बहन भाइयों को ज्यादा कुछ दे देते हैं, उस वक्त क्या करना है हमें, अपनी जिम्मेदारी की तरफ नजर रखनी है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं क्यों उनको पूछूं, इन्होंने कोई मुझे पूछा, इन्होंने अब उसको दिया ना सब कुछ, तो उसी से लें फिर, वही खिदमत करें ना, हम ये जवाब देते हैं। तो अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है, और इस नसीहत पर अमल करके बहुत सारे खानदानों के अंदर कम से कम अमन और अमान और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात सही हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही हदीस ले ली जाए, अपना हक किससे मांगना है और दूसरे का हक जब देने लगना है तो तब क्या करना है, ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आप सरअसर ने फरमाया, जो इन्होंने अभी बताया है कि सब्र से काम लेना जब तक कि मुझसे औस पर आ मिलो, यानी इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर जितनी देर तुम्हारी जिंदगी है उसके अंदर तुमने इसी तरह चलते रहना, दुनियावी मामलात में ऐसा होता भी रहेगा और तुमने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है उसके मुताबिक चलना। अच्छा, अगली जो हदीस है, हदीस नंबर 1211, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हदीस। फरजाना चौधरी, आप बताएंगी आपने इस हदीस से क्या सीखा?
जी, अस्सलाम वालेकुम सर। कहते
वालेकुम अस्सलाम।
हो ये कि एक अच्छा दौर था जो कि हमारे सहाबाए किराम का दौर था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में थे, फिर उसके बाद शर का जमाना आएगा, फिर उसके बाद मिला जुला जैसे धुआं मिलावट, उससे मुराद यानी कि सुन्नत के साथ साथ बिदात भी होंगी। और इसके बाद फिर ये कि जब पूछा गया तो कि एक ऐसा भी जमाना आएगा जिसमें ये कि गुमराही ही गुमराही होगी, तो हर कोई जो है कि वो जहन्नम के जैसे कि दरवाजे पे खड़े लोगों को बुला रहे होंगे, इनके इस कदर गुमराही फैल चुकी होगी, लोग बिल्कुल अपने दीन को भूल चुके होंगे और जो है बिदात और दूसरे गुमराही में फैले हुए होंगे।
अच्छा, और आप क्या कहती हैं कि आज का वक्त आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा है?
मुझे लगता है ये जो थर्ड वन चल रहा है जिसमें हम नेक काम भी हो रहे हैं साथ बिदात भी हो रही है,
यानी जो
ना जी
यानी जो आप कह रही हैं खैर पर कुछ धुआं होगा वो।
धुआं, जो धुआं का है ना खान, जो
अच्छा
कि मिला जुला जिसको बोला है, और
ठीक
सुन्नत और बिदात जैसे कि
ठीक
असर
है।
चल रही होंगी कुछ लोग, और हो सकता है कुछ लोग करें और कुछ है कि कुछ हमारे अंदर खुद भी सुन्नत को भी फॉलो करें और बिदात को भी फॉलो करें।
ठीक है, सही। अच्छा, और इस हदीस के ऊपर और कौन कौन यहाँ पे हैं जो बहुत दिन से ये उम्मे मलिहा, आप बताएंगी इस हदीस से आपने क्या सीखा?
वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
दौर अदवार का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है
हम्म,
वो, अच्छा पहला जो खैर वाला दौर कहा था वो खुलफाए राशिदीन का, और दूसरा बाद लमा के नजर में वो हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था वो वाला हो सकता है, या फिर हजरत माविया के दौर में जो खवारिश निकले थे वो भी हो सकता है, या फिर ये आम यानी कोई भी दौर हो सकता है। तो या तो हम दूसरे या तीसरे दौर में,
दूसरा तीसरा इनमें कौन सा आप कह रही हैं?
दूसरा वो जो शर वाला होगा यानी सहाबा के बाद ये शर वाला, या फिर ये कि खैर जिसमें धुआं हो, तो हम या तो दूसरे में है या फिर तीसरे में है।
अच्छा, और एक चौथा भी बताया गया है, खैर के
ये
बाद फिर
चौथा
शर
लगता है
का।
कि और कयामत के करीब, जैसे और अहादीस में आता है कि कयामत जो होगी वो बदतरीन लोगों पर होगी, तो शायद वो हो।
ठीक है, सही। और शहनाशा, आप भी इस हदीस के बारे में बताइए आपने क्या सीखा?
जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम
सरदा
अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी, यही जो सिस्टर फरजाना उनमें मरीहा ने बताया कि मतलब चार अतवार का जिक्र हुआ है यहाँ पे, और पहले वाला सहाबा वाला जमाना था, और उसके बाद जो है यहाँ पे वो कितने जो बर्पा हुए थे उनका भी जिक्र किया है, लेकिन सर ने बताया था कि ये हर जमाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो
सही
उस दौर के लिए खास था,
सही
हमारे लिए भी हो सकता है।
जी, बिल्कुल।
और ये तीसरा दौर भी लगता है मुझे, तो ये फोर्थ भी लगता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फितने जो है बर्पा हुए, हर जगह पे जंगे हैं, और
सही सही
जैसे खवारिज वगैरह अगर देखा जाए तो सीरिया में हर जगह पे बहुत लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं
सही
दोनों,
सही
ऐसा लगता है कि तीसरा और फोर्थ दौर दोनों इसमें आएंगे।
सही सही, ठीक है, शाबाश। जैसे ये सब लोगों ने अपनी अपनी बताई है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। इस हदीस को आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा जगह पे ये सर्कुलेट होती है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात होती है। और जैसे क्लास में भी बात हुई थी कि इसकी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस आपको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। हर एक अपने अपने मुताबिक करेगा, लेकिन जैसे हमें उस्ताद ने बताया था कि यानी ये सिर्फ एक जमाने के लिए हम नहीं कह सकते कि उनका सिर्फ जमाना था और अब नहीं है, या ये वाला जमाना गुजर चुका और अब ये सिर्फ जमाना चल रहा है, या ये है। इनमें से कोई भी जमाना की जो खैर और शर की बातें हैं वो किसी दौर में भी हो सकती हैं, इनमें से कोई भी किसी दौर में भी हो सकता है। और पिछले दौर अदवार के अंदर भी ऐसी चीजें आती रही, खैर के बाद शर, शर के बाद खैर, और इस तरह मिले जुले और ऐसे। और अब के जमानों के अंदर भी आ रही हैं जो चीजें, इनमें से कोई भी दौर चल सकता है। फिर उसके बाद आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर आएगा वो खैर का ही दौर होगा, और उसके बाद फिर अल्लाह आलम कौन कौन से अदवार अभी आने हैं। तो ये हर टाइम के लिए ये हदीस यानी पूरी उतरती है। मगर जैसे कि अगर हम बिल्कुल इस वक्त का जमाना लें, तो जैसे इन्होंने अभी कहा कि ये बात के जहन्नुम के दरवाजों की तरफ बुलाने वाले पैदा होंगे जिनकी बात कबूल करेंगे, जो भी कबूल करेगा वो उसे जहन्नुम में झोंक देंगे। इस बात का खास तौर पे क्या माना है कि जो हम यहाँ पे समझेंगे, क्या इससे मतलब है? शाजिया नासिर, आप बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बात का ये मतलब है कि बुराई बहुत ज्यादा फैल चुकी होगी और मतलब कि खुलेआम बुराइयां हो रही होंगी, इस्लाम की नाफरमानी की, दीन की नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी के काम हो रहे होंगे उस वक्त।
मगर नाफरमानी के काम तो पिछले दौर में भी हैं कि मेरी सुन्नत और तरीके के अलावा दूसरे तरीके इख्तियार करेंगे लोग, उनमें कोई अच्छी बात भी होगी बुरी बात भी।
जी पर इसमें यह होगा कि बजाहिर लोग भी ऐसे काम करेंगे कि जैसे लगेगा कि ये इस्लाम पर हैं और वो उनके अमाल जो है खुद के लिए, तो उनके वो अपने अमाल को बहुत अच्छा कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा किया, मगर कोई दूसरा कोई छोटा सा गुनाह भी करेगा तो उसको यही कहा जाएगा कि ये तो इसने बहुत गुनाही कबीरा कर लिया और अब ये तो मतलब मुस्तहिक हो गया जहन्नम का।
अच्छा, तो लेकिन वो कैसे बुला रहे हैं फिर जहन्नुम की तरफ?
वो अपने जैसे अमाल ऐसे के जैसे आजकल के हम मीडिया में देखें, मीडिया में जो कुछ हो रहा है ये काइंड ऑफ जहन्नम के, अगर कोई उनके फॉलो उनको फॉलो करता है, उनके फुटस्टेप पे चलता है तो वो मतलब वही जहन्नम के ही दरवाजे हैं ये, जो मतलब खुलेआम जो बेहयाई के और इस तरह की बातें हो रही हैं तो
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि वो हमारी कौम और मजहब के होंगे, हमारी ही जुबान बोलेंगे।
इनमें खारजी भी हो सकते हैं जो मतलब जो इस तरह के हैं खारजी लोग, उनको कहा गया है कि जो
खवारिज को भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सही। जज़ाकअल्लाह खैरा। ये बहुत डीप हदीस है, असल में ये इतनी आसान नहीं है समझनी। ये इट्स रियली बहुत डीप हदीस है, और इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हदीस है। और मुझे लगता है कि इसका हक नहीं हम अदा पाए इस हदीस का, सिर्फ एक इस हदीस को ही लेकर हम अगर चलेंगे तो बहुत बहुत कुछ इसके अंदर है इस एक हदीस में। पहले तो आप जो खैर में कुछ धुआं होगा, इसी बात को सिर्फ देख लें कि मेरी सुन्नत और तरीके के अलावा दूसरे तरीके इख्तियार किए जाएंगे, उनमें कोई अच्छी बात होगी कोई बुरी होगी। ऐसे लोग होंगे वो बड़े बड़े बहुत नेक, बहुत सालहीन और बहुत अल्लाह वाले बनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अलावा और तरीके निकाले खड़े हैं और वो उन्हीं की तरफ लोगों को बुलाते हैं। ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं ना, जो नए नए नित्य नए तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अलावा निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक खैर के बाद फिर शर का जमाना भी आएगा, वो वाला एक जमाना है, लेकिन इसके बाद एक और शर का जमाना आएगा। उसमें फिर भी अभी थोड़ी बहुत खैर थी, अच्छी बातें भी थी बुरी भी थी, लेकिन खैर के साथ कुछ धुआं मिल गया था और ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। आज नहीं, बिदतें निकली हैं, ये याद रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना बिदात अपने इर्द गिर्द, ये आज लोगों ने नहीं निकालनी शुरू की, इन बेचारे लोगों ने तो पिछलों को ही फॉलो किया है, तो काफी मतलब कुछ जमानों से ही चल रही है ना, वो यही क्या के करें नहीं, हमारे तो अब्बा भी और दादा भी और परदादा भी यही करते थे और हमारे तो खानदानों में यही होता है, तो ये बिदात पीछे से चली आ रही है कि यानी ये चीजें कोई आज की इन्वेंशंस नहीं है, ये पिछले दौर में उस वक्त खैर भी थी और धुआं भी था। लेकिन जो जहन्नुम के दरवाजों की तरफ बुलाने वाले पैदा होंगे, इसका मतलब पिछले उनके अंदर नहीं होंगे, मगर ये इस खैर के बाद जो फिर शर का जमाना आएगा, इसमें ऐसे लोग होंगे जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले होंगे, कुछ लोग खड़े होंगे जहन्नुम के दरवाजों पर और वो लोगों को बुला रहे होंगे, जो उनकी तरफ आ जाएगा वो उसको जहन्नुम में झोंक देंगे। आप मुझे ये बताइए कि किसके कहने के ऊपर लोग जाते हैं, किस किन किन को लोग फॉलो करते हैं? इमाम्स को, शाबाश, और उलमा को, शाबाश, बिल्कुल, फ्रेंड्स को, मगर उस तरह से नहीं इतना ज्यादा, मगर एक ही ट्रेंड हो जाता है कि भाई ये भी कर रहा है तो उसके, मगर ये कुछ लीडरान है, ये फ्रेंड ठीक है वो है, मगर कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो बाकायदा बुला सकते हैं, दे हैव द पावर द अथॉरिटी, या इस तरह से जो भी समझ लें, रिलीजियस फॉलोइंग भी इसमें आ जाती है, इसमें मतलब खास तौर पे रिलीजियस फॉलोइंग है, तो खास तौर पे उलामा हैं जो मजहबी स्कॉलर हैं, जो अपने आप को मजहब के ठेकेदार समझते हैं, कि बिल्कुल सही बात है, जिसमें समझते हैं कि हम दीन वाले हैं, हाँ जी, बड़े नाम वालों को, जिन जो भी मालदार भी शायद उतने नहीं, मालदार तो खुद मालदार होता है, वो लोगों को नहीं बुला रहा होता, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं लोगों को बुलाते हैं, अजी इस रास्ते की तरफ आए, ये सही रास्ता है, ये है, और आज वही लोग हैं अपने फिरके को चाहे फॉलो करते हैं, चाहे और बिदात को प्रमोट करते हैं, चाहे और आज के वक्त में फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे ऐसे उलामा पैदा हो गए, उलामा तो उनको क्या कहेंगे, पता नहीं क्या है वो, लेकिन जो हदीस का इनकार करने वाले हैं, जो नए नए फितने दीन के अंदर निकालने वाले हैं, और उसकी बेसिस पर लोगों को बुलाते हैं अपनी तरफ, और लोगों को उसकी, और लोग भी उनको फॉलो करते चले जा रहे हैं, लोग उनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे में उनकी बात क्या बताई गई कि वो जहन्नुम के दरवाजों पे खड़े हुए हैं और वहां वो जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल आपने कहा जो टेररिज्म को वो करते हैं और उसका नाम जिहाद दे देते हैं, और इस तरह वो यानी वो बुलाते हैं ना लोगों को, याद रखिएगा जो आप कह रहे हैं ना, फ्रेंड्स हैं या मालदार लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या वो एक यानी वो अपनी, देखा आपको कोई ये स्टार्स वगैरह या ये वो, आप खुद उनकी फॉलोइंग करते हैं, वो आपको कोई बुला नहीं रहे होते कि आओ जी आओ हम एक, तो हम खुद एक उनको बड़ा समझ के करते हैं, मगर बाज लोग हैं वो बुलाते हैं इस तरफ, दे आर लिटरली इनवाइट करते हैं इस रास्ते की तरफ, फैब्रिकेटेड हदीस को प्रमोट करना, बिल्कुल, जो जो बुराई जो दीन के अंदर फितने 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 निकाल के और उसके पीछे अपने पीछे लोगों को लगाते हैं और लोग इस रास्ते के ऊपर उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको सीधे जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब वो जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और लोगों को बुला रहे हैं, क्या लोग कभी जहन्नुम को अपनी आंखों से देखते भालते हुए उनकी तरफ जाएंगे? ये बताइए, क्या कोई जाएगा आग की तरफ देखते भालते हुए? नो। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये लोग अंधे हैं जिनको पता ही नहीं है, या वो इस तरह से करके दिखा रहे हैं कि ये जहन्नुम नहीं है तो बड़ी अच्छी चीज है, इधर आओ इधर आओ। ऐसे वक्त में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है जी, ये बताएं आप लोग, यहीं पे जवाब दें, मैं लाइन ही ओपन, इल्म की, शाबाश, इल्म की जरूरत है ऐसे वक्त में सबसे पहले, मुस्लिम लीडर की तो बात की बात है, मुस्लिम लीडर तो कोई पता नहीं उस वक्त हो गए, इल्म की जरूरत है कि रिकग्नाइज आप कर सको कि ये मुझे किसकी तरफ बुला रहा है। आप बेशुमार स्कॉलर देंगे, टीवी पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, हर जगह पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भांत भांत की बोलियां, देयर इज अ जंगल, होल जंगल एक, जिसमें हर एक की अपनी बोली है, खुद बुला रहा है एक तरफ को, कोई कह रहा है कि नहीं जी सूद तो हराम ही नहीं है, वो तो वैसे था, कोई कह रहा है नहीं जी पर्दे की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो ये आओ बिल्कुल पुरानी बात हो गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ये अल्लाह के रास्ते में लड़ना है और आओ ये तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, कोई हर एक अपनी बोली बोल रहा है, हम कैसे जाने इनमें ही लोग हैं, याद रखें, उन्हीं उलमा में होंगे जो जहन्नुम की तरफ बुला रहे होंगे लोगों को, और लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। कहीं कोई पीर फकीर बन के बैठे हुए हैं, कहीं वो कोई बड़े गद्दी नशीन बन के बैठे हुए हैं, कहीं कुछ बन के बैठे, वो लोगों को किस तरफ बुला रहे हैं? कहीं कोई शिर्क की तरफ बुला रहा है, लोग अंधे हैं, वो चलते चले जा रहे हैं। ये इसका मतलब इंसान को इल्म लेना कितना जरूरी है आज, क्योंकि ये आज वही वक्त है जब हमारी नानी दादी वो वक्त था, उनके पास तो इल्म ही नहीं था, लेकिन कोई बुलाने वाले भी नहीं थे। आप नोट करें, उस जमाने में कोई ऐसे उनको जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले नहीं थे, वो तो ऐसा कोई दौर ही नहीं था, बिल्कुल ही समझ लें क्वाइट सा दौर था। आज तो बोलियां हैं, हर तरफ से बोलियां हैं, हर तरफ लाउड स्पीकर लगे हुए, सो मच अराउंड यू, और उसके अंदर आपको किसको फॉलो करना है, किस बोली, किसकी आवाज के पीछे जाना है, तो वो उसके लिए इल्म चाहिए। जिसके पास इल्म नहीं होगा वो अंधाधुंध चल पड़ेगा कि जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मन घड़त तफसीरें बनाई हुई है, खुद ही तफसीरें कर करके कि को जी, इसका मतलब ये है, और अब तो इसकी तो जरूरत है नहीं, हम खुद ही अपनी तफसीरें करेंगे, हदीस की तो जरूरत ही नहीं है ना। ऐसी ऐसी चीजें आज निकल आई, वो सहना सुन के हैरत होती कि ये दीन में ये भी चीज निकाल ली, दीन के नाम पे ही सारा फितना फसाद हो रहा है दुनिया के अंदर। वो क्या है? वो जहन्नुम के दरवाजे ही तो हैं। तो अब आप किसकी आवाज सही है और कहाँ पे देखें, किसी की भी ऐसी फॉलोइंग कर लेना कि वो जहन्नुम की तरफ बुला रहा है, मैंने आपको बताया ना, या तो अंधा जाएगा जिसको खुद ही इल्म नहीं है, या फिर वो ऐसा आपको करके दिखाएगा को उसको वो दिखा रहा है कि ये बड़ा, जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान में सब्ज बाग दिखाते हैं, वो सब्ज बाग दिखाएगा लोगों को अपनी तरफ के लिए। वो खड़ा हुआ जहन्नुम के दरवाजे पे है, वो थोड़ी दिखा रहा है कि मैं ये जहन्नुम के दरवाजे पे खड़ा हूं, आ जाओ जहन्नुम की तरफ आ जाओ, ऐसे थोड़ी कोई आएगा उसके पीछे। वो जहन्नुम को ऐसा सब्ज बाग करके दिखाएगा, ऐसी जन्नत सा दिखाएगा कि लोग उसके पीछे चल पड़े, आओ मैं ही तुम्हें बख्शवा दूंगा, मेरा ही दामन पकड़ लो, वही इतनी दरवाजे के नीचे से गुजर जाओ। इस परफेक्ट बिल्कुल, जब लोगों के पास इल्म नहीं होता तो वो यही समझते हैं कि भाई हाँ ये सही है, और लोग उसके पीछे चलेंगे। इस वो कहाँ पे लीड करके लोगों को किस तरफ को बुला रहा है? जहन्नुम की तरफ को बुला रहा है। ये याद रखिएगा, जहन्नुम के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े होंगे आखिर एंड ऑफ टाइम के वक्त में, जैसे कि आज है। और ये बात बहुत जबरदस्त समझने की है कि वो लोग हमारी कौम और मजहब से होंगे, हमारी जुबान बोलेंगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कोई स्टार्स या कोई कोई ये लोग ये वो जुबाने नहीं बोलते, वो तो बुराई है, बुराई सबके सामने है और बुराई दिखा रहे हैं। अब जिसका दिल चाहता है वो बुराई के पीछे चला जाए, अब वो तो अब लोग देखे भले ही जा रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं कि वो दिखा रहे कुछ है लेकिन वो है कुछ नहीं, वो तो बुराई सामने है। ये वो लोग हैं जो कि यानी लोगों को जिसको कहते हैं गुमराह करें, या लोगों को ब्लाइंड करके, या लोगों को धोखा देके उस तरफ को बुला रहे हैं कि वो कौम और मजहब और हुलिये और जुबाने, और वो वैसे ही बोलते हैं कि जैसे इनसे ज्यादा दीनी कोई है ही नहीं। क्या आपने फरमाया ना मुसलमानों की जमात में से हैं, को तो ये ऐसे लोग हैं कि यानी आप उनको नहीं कह सकते कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमानों में से ही होंगे, बल्कि अपने आप को बहुत ज्यादा मुसलमान कहेंगे, बहुत ज्यादा वैसी वैसी बातें करेंगे, लेकिन उनकी दाढ़ियां देख के और उनकी कुरान की आयतें पढ़ने से और उनकी नमाजें और सजदे देख के उनके पीछे नहीं चले जाना, अपनी आंखें खोल के देखना है। जैसे उन्होंने सहाबा ने क्या किया था, आप फरमाया था अपने इमाम के पीछे चलना, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा हमें इस दीन के बाद आने की बात तो हमें जहन्नुम से ही तो हमने बचना था, आग से ही बचना था, इनके कहने पे क्या आग में कूद जाए? तो यानी इस वक्त के अंदर कोई अगर आग की तरफ बुला रहा है तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ जी वो नमाजें तो पढ़ते ना, वो तो इतने वो हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो कुरान की आयतें कोट करते हैं, इसके पीछे नहीं किसी को फॉलो करना शुरू कर देना, बल्कि अपनी आंखें खोल के देखना है ये वो दौरे फितन है। और इस दौरे फितन के अंदर अगर किसी के पास इल्म ही नहीं होगा तो वो तो बेचारा बिल्कुल ही भटक गया। सुनना बताओ तो कहते हैं हमने नहीं सुना इसको अपने काम इल्म को कंप्लीट। हाँ बिल्कुल, अपने आप को समझते कि हमसे ज्यादा इल्म तो किसी के पास है नहीं, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। सेइंग ये इनका अमल सही है बगैर इल्म के। अल्लाह अकबर, बगैर इल्म के तो बेचारा कोई गुमराह ही होगा, वो तो बिल्कुल भी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। फेसबुक इज फिल्ड ऑफ फैब्रिकेटेड हदीस विद फेक बुखारी रेफरेंस, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो ये वही लोग हैं ना जो जहन्नुम की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। अब वो हदीस लिख दी और हदीस में कुछ भी अपनी तरफ से जो खुद चाहते हैं वैसा डाल दिया मवाद। अब इस वक्त में भी ये पहचानने की जरूरत है। रसूल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मुसलमानों की जमात के साथ रहना और इमाम के ताबे रहना। अब इमाम ही नहीं है अगर कोई खलीफा नहीं है मुसलमानों का, और फिर भी क्या करना है कि यानी फिर दरख्त की जड़ चबा लेना लेकिन तुम्हारी मौत इसी हालत में आ जाए। अब ये क्या ऐसे वक्त में होगा जब इतना ज्यादा फितना फैल गया होगा कि बिल्कुल किसी जगह पे रहना मुमकिन ही ना हो। क्योंकि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं फितनों को देखता हूँ तो कि तुम्हारे घरों के ऊपर बारिश के कतरों की तरह बरस रहे हैं। और वो तो यानी वो तो दौर दौरे फितन था भी नहीं, जो आज दौरे फितन है। लिटरली ये दौरे फितन है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना ज्यादा फितना है बाहर, इतना ज्यादा फितना है कि मेरा ख्याल में तो आप अपने घरों के अंदर ही पनाह लेके बैठे रहे हैं, तो शायद कोई फितने से बच सकता है, वरना फितना हर तरफ फैल चुका है। जी, हदीस का इल्म भी जानना बहुत जरूरी है, और बहुत सारी और इंटरप्रिटेशंस इस हदीस की गई हैं। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं इसकी कोई इंटरप्रिटेशंस करूं, मगर कम से कम आप इन अल्फाज को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब आपके सामने फिर ऐसे कोई फितने आते हैं तो फिर कम से कम ये हदीस याद होगी, तो थोड़ी बहुत हो सकता है जहन में आ जाए कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जहन्नुम के दरवाजों की तरफ बुलाने वाले पैदा होंगे, ये जहन्नुम के दरवाजे की तरफ बुला रहा है, ये खड़ा जहन्नुम तरफ मुझे बुला रहा है और मैंने इस रास्ते पर नहीं जाना, चाहे वो कितना ही मुझे पारसा नजर आ रहा हो। अपने दीन के मामले पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने दीन के मामले में ये नहीं कहना कि अच्छा कोई बात नहीं है, ये तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। अच्छा, यहाँ तक ही हम रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे को हमारा टेस्ट है। कोशिश तो ये थी कि आज ये मुकम्मल हो जाता लेकिन अब क्लास के शुरू होने का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम हम खत्म कर लेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।